Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ke dusra adhyay ka satva mantra dekhna. सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मा पूर्वम् तत्र यौनेम कृणवसे नहि ते पूर्तम् अक्षिपत्। ये बता रहे ध्यान कहाँ करना चाहिए। अन्य बात, सविता की अनुज्ञा से फायदा क्या क्या लाभ और अनुज्ञा न लेने पर क्या हानि है, ये बता रहे। तो कल के प्रसंग में आपको बताया थोड़ा रह गया था, तस्मात् प्रथमम यज्ञादि अनुष्ठानम ततः प्राणायामादि ततः समाधि ततो वाक्यार्थ ज्ञान निष्पत्ति ततः कृत्यता इति। देखो, जीवन की सफलता कहाँ से हो, कहाँ तक, ततः कृतकृत्यता कदा, तस्मात् प्रथमम यज्ञादि अनुष्ठानम, पहले क्या करना चाहिए, हाँ, यज्ञादि का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों, यज्ञदाना तप कर्मा पावनाने मनीषी नाम, आया कि नहीं, गीता के 18वां अध्याय में अर्जुन ने पूछा था भगवान से, यानी बात, संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्याग से ऋषि के साथ पृथक कैसी निशुधना, त्याग किसको कहते हैं, संन्यास किसको कहते हैं, अलग अलग मैं जानना चाहता हूं। अन्य बात, तो भगवान ने क्या बोला, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, काम्य कर्मों का त्याग देने का नाम संन्यास, ऐसा कुछ लोग कहते, कवि लोग कहते। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षण, विद्वान लोग कहते सर्व कर्म फल त्याग देना चाहिए, है ना, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण, इसको त्याग कहते विद्वान लोग। आगे चल करके भगवान बोलते यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तीन बातें याद रखना, यज्ञ दान तप, ये तीनों जो है ना, त्याग नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ये त्याज्य नहीं है, यह नहीं है, त्याग करने लायक नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म क्यों, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणम, पवित्र करने वाला है। आनी बात, तो कहते यज्ञ दान तप करने से क्या होगा, पवित्र होगा, यह इस बात को बतला रहा है। देखो, पहले क्या करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठानम, यज्ञ भी कैसा है, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पूर्त यज्ञ इष्ट पूर्त मन्यमाना वरिष्ठम, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, श्रोत यज्ञ स्मार्त यज्ञ ये है। तो यज्ञादि अनुष्ठानम करोगे इससे क्या होगा, यज्ञादि अनुष्ठान है ना, परंपरा साधन है, परंपरा साधन है। इसके बाद कहते प्राणायाम आदि ततः कुरिया, यज्ञदान आदि किया, इसके बाद में प्राणायाम, आदि शब्द से लेना प्राणायाम, प्रत्याधारणा ध्यान समाधि जो भी है साधन, यज्ञानुष्ठान योगानुष्ठान तथा समाधि ही, इसके बाद तो समाधि आएगा। हाँ, समाधि तथा वाक्यार्थ ज्ञानम, इसके बाद में वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यार्थ माने तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का ज्ञान का विचार, तत्त्वमस्यादि महावाक्य का विचार, वाक्यार्थ ज्ञान। आपने गुरु के पास गए, अंतकरण शुद्ध करके गुरु जी से कहा को हम कथमिदम जातम कर्ताश्य को विज्ञ थे, मैं कौन हूँ, इस जगत कहाँ से आया, इसका कर्ता कौन है, ये कहाँ कैसे स्थित है, ये सब बात जब गुरु से प्रश्न करोगे तो गुरु उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा। भाई क्या समाने तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का विचार, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आप लोग सुना कि नहीं, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपसर आदि भगवो ब्रह्मेति, भृगुर्वै वारुणी वरुण का पुत्र जो वारुणी है, भृगु है भृगु, वो पिता वरुण के पास जाकर के प्रश्न किया आदि भगवो ब्रह्मेति, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, और पिता ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का कोशिश करो, तब ही ब्रह्म है। हाँ? ब्रह्म क्या से जाए, तप है, तप का अर्थ है यहाँ नाक दबा करके आंख बंद करके बैठे रहने का नाम तप नहीं है, वो तप नहीं है यहाँ, तपो नाम हो विचार, वेदांत वाक्यों का विचार। तो पर जो चला गया जा करके विचार किया, विचार करके उसने अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, अन्नम ब्रह्म अन्नादि खुले इमाने भूताने जायन्ते अन्न न जाता ने जीवंत अन्नम प्रयंती अन्नम अभिशंति अन्नम ब्रह्म इति, अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना, परंतु उसके मन में संतोष नहीं हुआ कि अन्न तो सड़ने करने वाला है, अन्न जो है ना जड़ है, अन्न कैसे ब्रह्म होगा। तो फिर पिता के पास आया, पिता ने कहा क्यों शांति मिली, ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा को जान लिया, बोले नहीं पिताजी नहीं, न मैं ब्रह्म को जाना न शांति मिली, हाँ न हमारा संसार मिटा है। तो पिता ने कहा जाओ तपस्या करो, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, हमेशा एक ही बात है, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, तभी ब्रह्म है। आखिर में होते 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 कहाँ चला गया, तस्मात बाह्य तस्मात अन्नमयात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, तस्मात बाह्य तस्मात प्राणमयात अन्यो अंतर आत्मा मनमय, तस्मात बाह्य तस्मात मनमयात अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय, तस्मात बाह्य तस्मात विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, आनंदादि खोलई माने भूताने जायन्ते आनंदेन जाताने जीवन्ति आनंदम बहन्ति अभिष आनंदम ब्रह्म। तो वहां पहुंचा आनंदमय कोश, आनी बात आनंदमय कोश। तो इसी प्रकार कहते हैं गुरु जो है ना शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करते। तो पहले जगत अनादि के द्वारा अंतकरण शुद्ध हुआ, योग के द्वारा चित्तवृत्ति को शांत कर दिया, तुमने शांत कर दिया, योग अभ्यास के द्वारा क्या किया, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा चित्तवृत्ति को शांत किया, योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, जो कि अंगों का अनुष्ठान करने पर अंतकरण की शुद्धि होती है, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि समझते ना, जो चित्त में राग द्वेष आदि अशुद्धि रहते, क्लेश कर्म विपाक आशय आदि रहता है, ये सब मिट जाता है, शांत हो जाता, दुगांगा अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, हाँ अशुद्धि क्षय हो गया, प्राणायाम आदि के द्वारा चित्त शांत हो गया, विक्षिप्त निवृत्त हो गया, शांत हो गया। फिर इसके बाद में समाधि आया, समाधि समझते हैं ना, निद्रा समाधि स्थिति, सो गया तो समाधि लग गई कि नहीं, किसको सोने के बाद समाधि नहीं लगती है, गोली खानी पड़ती है, आनी बात निद्रा समाधि स्थिति, तो निद्रा को समाधि मान लेना बात दूसरी है। समाधि अति अस्मिनिति समाधि, जिसमें समाधि, जिसमें चित्त की तमाम वृत्तियां एक साथ निवृत्त हो जाता है, मिट जाता है, तो चित्त की वृत्तियां कितनी है, हाँ या तीन समझ लेना, सात्विक राजसिक तामसिक। क्यों? समाधि वृत्ति निरोध का नाम समाधि है, चित्त वृत्ति निरोधा योग है, योग समाधि, योग का अर्थ कर दिया समाधि। तो योग समाधि यदि करोगे तो तुम्हारा सात्विक वृत्ति जब रहेगा तो तामसिक का राजसिक वृत्ति की निवृत्ति रहेगी, तो उस अवस्था में भी योग कहा जाएगा, है नहीं बात। अथवा रजोवृत्ति आ गई, तामसिक का सात्विक वृत्ति दावी हुए हैं, तो उस अवस्था को भी समाधि कहा जाएगा, क्यों? वृत्ति निरोध तो है ही है, एक वृत्ति तो निरोध आएगी नहीं, वृत्ति निरोध का दो है ना, सत्य वृत्ति है, तो रज और तम वृत्ति का निरोध हो गया, उस अवस्था को तुम क्या बोलोगे, समाधि। तो वृत्ति निरोध समाधि यदि कहोगे तो एक वृत्ति जाग रहा है, कैसे होगा समाधि? इसीलिए वहां अर्थ किया, वृत्ति निरोध का मतलब होता है सभी प्रकार के वृत्ति जिस अवस्था में निरोध हो जाता है उस अवस्था का नाम समाधि। समाधियति अस्मिन् वृत्तये इति समाधि, जिस अवस्था में समस्त वृत्तियां निरोध हो जाता है उस अवस्था का नाम समाधि हो गया। पहली बात ये बता रहे, समस्ततो वाक्यार्थ ज्ञानम, समाधि हो गया। अब सवाल यह है, जब समाधि में रहेगा तो वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा? आप समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठने के बाद में तो तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश कैसे सुनोगे, और सुनोगे नहीं विचार कैसे करोगे? क्योंकि वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, वाक्य के अर्थ के विचार से, वाक्यार्थ विचारे न जायते ज्ञानम उत्तमम, तो वाक्यार्थ मतलब महावाक्य, वही वाक्य नहीं है घट मानय पट मानय मठ मानय, ऐसा ये भी वाक्य है, इस वाक्य के अर्थ से ज्ञान तो सामान्य है, परंतु वाक्यार्थ तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। येन सद्य विमुच्यते है, जिसके द्वारा सद्य माने उस समय में ही, जिस समय में तुमने वाक्यार्थ ज्ञान प्राप्त किया उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कालांतर में मुक्ति नहीं। देखो वेदांत की विशेषता है, कर्म से मुक्ति होगी मरने के बाद, क्यों? कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, वहां मुक्ति का मतलब स्वर्ग तक की प्राप्ति, कैवल्य मोक्ष नहीं है, यानी बात जो मोक्ष होते हैं ना, एक मोक्ष होते हैं कैवल्य मोक्ष, हाँ एक मोक्ष होते हैं नित्य मुक्ति, सुषुप्ति अवस्था में संसार के व्यवहार से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है कि नहीं, हाँ। तो कहने का मतलब नित्य मुक्त, आत्मा नित्य मुक्त है, तो नित्य मुक्त कब होगा? जागृत में होगा, सपना में होगा, सुषुप्ति में होगा, कैसे होगा? आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा में तीनों काल में बंधन नहीं है। तो गुरु जी बंधन नहीं है तो हमको वेदांत वाक्यों का श्रवण करने की जरूरत क्या है? हम तो नित्य मुक्त है, क्या जरूरत है वेदांत वाक्यों का विचार करने का? क्यों वहां आपसे महावाक्यों का श्रवण करने का क्या जरूरत है? यदि शिष्य ऐसा प्रश्न करते हैं तो इसका क्या उत्तर देगा? बोला बेटा, आत्मा तो नित्य मुक्त है, इसमें संदेह नहीं है, आत्मा में कोई बंधन नहीं है, परंतु तूने जो आपने को आरोपित कर दिया है, अविद्या का, अज्ञान का, संसार का जो आरोपित किया है ना, आरोप किया है आपने में, ये आरोप को हटाने के लिए श्रवण करना चाहिए। अविद्या, आवृत्ति, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति, निवृत्ति, निरंकुश की सात अवस्था जीव में रहता है बेटा। जीव में सात अवस्था हमेशा रहती है, याद रखना। तुम भलाई करो। अविद्या, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, भ्रांति, निवृत्ति, निरंकुश तृप्ति, 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 आनंद, आनंद की अनुभव, अंकुश रहित तृप्ति। जिस तृप्ति में किसी प्रकार का अंकुश माने लगाव नहीं है, बंधन नहीं है। जैसे हस्ती को अंकुश लगा करके कंट्रोल करता है कि नहीं, ऐसे तुम्हारे आनंद में कोई प्रतिबंधक, कोई रुकावट, कोई वो नहीं है। तो देखो, अविद्या है, आवरण है, तुम्हारे अंदर अविद्या है कि नहीं? अविद्या है तो फिर आवरण भी होगा। अविद्या का दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप शक्ति। आवरण और विक्षेप शक्ति अपने स्वरूप को आच्छादन कर देता है, जिसके द्वारा स्वरूप आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, उसको आवरण कहते हैं। आवरण, जैसे नाटक दिखाता है कि नहीं, नाटक के सामने जो है ना, जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता और जो है ना कलाकार, ये दोनों को बीच में एक पर्दा डालता है, पर्दा को आवरण कहते हैं। तो भीतर का व्यक्ति बाहर नहीं देखता, बाहर का व्यक्ति भीतर नहीं देखता है, तो दोनों को एक करने के लिए क्या करना पड़ता है? आवरण हटाना पड़ता है। ऐसे जीव और ब्रह्म में आवरण पड़ा है, जीव और ब्रह्म में क्या पड़ा है? तो ब्रह्म भी भीतर है, तुम भी भीतर हो, दोनों हो, फिर भी तुम ब्रह्म को नहीं जानते हो, अपने को नहीं जानते, क्या कारण है? तो अविद्या का आवरण पड़ा है। तो अविद्या के आवरण पड़ने से ब्रह्म के ऊपर तो विक्षेप पैदा हो गया, विक्षेप आने बात, विक्षेप कहते जीव को, विक्षेप माने जीव है। तो जीव जो है ये कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, संसारी, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय आने बात, ये पांच क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये जो चारों है ना, ये चारों जिसमें रहेगा उसका नाम आज जीव है, और क्लेश, कर्म, विपाक, आशय चारों जिसमें नहीं रहता उसका नाम ईश्वर है। ये दोनों जीव, ईश्वर दोनों कहाँ रहते हैं? दोनों भीतर रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं, पर विस्में अविद्या का आवरण शक्ति है ना, दोनों को अलग कर दिया। इसीलिए पंचदशी में लिखते हैं आनी बात, माया, माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव, एक का नाम ईश्वर, आनी बात। माया का दो बेटा है, एक का नाम जीव, एक का नाम ईश्वर। तो जीव और ईश्वर का एक क्या चीज है? दोनों माया का बेटा, माया का बेटा दोनों है। परंतु दोनों होता हुआ अभी दोनों बेटा माया रूपी माता का स्तनपान करता है। वो क्या है? द्वैत रूपी जो भेद रूपी जो दूध है वो दोनों पीता है। माया का यो कामधेनु वत्स जीवेश्वरो, माया नाम का जो है ना कामधेनु है, उसका दो बसड़ा है जीव और ईश्वर। जथेच्छा पीबताम द्वैतम, जब तक तुमको दूध पीना है तो पियो, खूब पियो, खूब पियो। कौन सा दूध? द्वैत रूपी दूध, भेद रूपी दूध पियो। हाँ, वास्तव क्या है? वास्तव में अद्वैती है। माया इच्छा यो काम देनो वत्स जीवेश्वरो जथेच्छा पीबताम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थ में दोनों एक ही है, दोनों में कोई जीवेश्वर में भेद नहीं है। और जब तब अज्ञान का आवरण है, अविद्या है, तब दोनों में कोई आवरण कैसे हटाओगे? आवरण हटाना पड़ेगा। तो अविद्या के जो आवरण शक्ति है, अविद्या का जो आवरण शक्ति है, आवृत्ति है, कहो आवरण कहो आवृत्ति कहो, ये आवरण हटाने के लिए वो जो अभी अभान आपाधक, अभी आपने बोला ना, एक है अभान आपाधक आवरण और एक असत्व आपाधक आवरण। दो आवरण होता है, जीव से अधिकारी से गुरु ने पूछा कुटस्थम तुम जाना सी, क्या तू कुटस्थ को जानता है? तो ज्ञात्वा भी उच्यते नाहम कुटस्थम जानामि, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। तो कुटस्थ को नहीं जानता है, कुटस्थ को जानता है। नहीं जानता मतलब कुटस्थ को मानता है कि नहीं? कभी तो कहते नहीं जानता। कलना सेठ को तुम जानते हो? बोले नाम तो सुना, जानता नहीं। ऐसे कुटस्थ को तुम जानते हो? ना हम कुटस्थ जाना, मैं कुटस्थ को नहीं जानता। ये न जानने का नाम अभन आफादा का आवरण, बांध नहीं हो रहा है, बांध नहीं हो रहा है। और जो असत्व आफादक कुटस्थ है नहीं, है ही नहीं, इसका नाम असत्व आफादक। तो असत्व आपादन जो आवरण है वो नाश कैसे होगा? वेदांत वाक्यों के श्रवण करने से। रोज सुनते हो ना, रोज सुनते हो, सुनते 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 ये असत्व बना, तब तुम्हारे मन में विश्वास होगा, हाय ईश्वर नाम का कोई वस्तु है। महात्मा लोग बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, सुनो सुनो भजन करो भजन करो, हाँ जीवन का कल्याण करो जीवन का कल्याण करो, जीवन के सदुपयोग करो, बोलता है कि नहीं? तो सुनते सुनते मन में आता क्या है तेरे जाने तो से, हाँ? तो असत्य बन बजो नहीं है, है नहीं,